ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को सशक्त बनाने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली जिला न्यायालय द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए विशेष संध्याकालीन न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्टेडियम में आयोजित संस्कृत भारती के 1008वें संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कल से श्रमदान के रूप में मेगा स्वच्छता अभियान शुरू करेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद के अलावा पार्टी के विधायकों ने भाग लिया। इस बैठक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान मानसून को ध्यान में रखते हुए जलभराव, ड्रेनेज व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बैठक नियमित जनप्रतिनिधि संवाद श्रृंखला का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि बैठक में 20 दिवसीय स्वच्छता अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विधायकों से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मेडिकल लीगल एविडेंस एंड पेशेंट रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल से मेडिको लीगल रिपोर्ट को बनाने में लगने वाले समय में कटौती होगी और डिजिटलीकरण से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल से जांच एजेंसियों और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय होगा, जिससे कार्य को गति मिलेगी।
हमारी जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं या MLCs हैं, उसको डिजिटलाइज वे में लेके आना चाहिए और दिल्ली ने अपना मेडल PR के ऊपर जो वर्किंग था वो सब किया, आज उसे रोल आउट किया है और इसके बाद से सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो डिजिटली लाई जाएंगी। उसका जो एक्सेस है वो लिमिटेड हाथों में रहेगा, उसका अकाउंटेबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें स्कोप ऑफ एरर बिल्कुल जीरो हो जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार शहर के लोगों के लिए प्रतिदिन 24 घंटे काम कर रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार पिछले 27 वर्षों से अटके हुए कार्य को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि अब सचिवालय हर दिन खुलता है और वहां काम भी हर रोज होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई, लेकिन सरकार की तत्परता से जल भराव की स्थिति को एक घंटे में ठीक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान सरकार सड़कों पर जनता के बीच थी और कार्य कर रही थी।
सरकार 24/7 ऑन व्हील है, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है। चाहे वो मौसम के कारण दिल्ली को दिक्कत आए या किसी देरी के कारण दिक्कत आए, चाहे न्याय प्रक्रिया में सरकार की कार्यवाही हो या सड़कें और नालियां दुरुस्त करने में, हर एक सेगमेंट में काम हो। जो वर्षों का बैकलॉग है, पिछले 27 सालों का दिल्ली का बैकलॉग जो है, ये खत्म करना है भाई।
गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की प्रगति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
बैठक में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादन और गुणवत्ता परक बीजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 2023 में 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें ऐसे 3 विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनका भारत से निर्यात नहीं हो रहा है। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को सभी निर्यात NCEL के माध्यम से करने के निर्देश दिए। इससे 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होगा तथा करों और प्रचालन लागत के बाद शुद्ध लाभ सहकारी समितियों को वापस मिलेगा। श्री शाह ने दालों के आयात के लिए अफ्रीका और म्यांमार में NCEL कार्यालय स्थापित करने, वैश्विक मांग को समझने और उनकी आपूर्ति क्षमताओं को साझा करने के लिए वेबसाइट बनाने का सुझाव भी दिया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रादेशिक समाचार के लिए मनोज।
दिल्ली पुलिस का राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी है। इस कड़ी में पुलिस की पूर्वी जिले की टीम ने 6 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ करने पर प्राप्त जानकारी से उन्होंने शहर के पहाड़गंज इलाके से 5 और बांग्लादेशी महिलाओं को भी पकड़ा। पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि वे बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रही थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली जिला न्यायालय द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए विशेष संध्याकालीन न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये विशेष न्यायालय हर कार्य दिवस पर शाम 5 से 7 बजे तक चलेगी, जिसका लोग लाभ उठाकर अपने लंबित चालान का निपटारा कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए पहली बार निगम के विद्यालयों में स्टार अभिभावक मीटिंग का आयोजन किया। निगम के अनुसार इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, जिसमें विद्यालय और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका हो। निगम ने बताया कि अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को 75,000 पीयर ग्रुप में बांटा गया है और 75,000 स्टार अभिभावक भी चुने गए हैं। आज देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित की गई। ये परीक्षा 13 शहरों में 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पूरी हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्टेडियम में आयोजित संस्कृत भारती के 1008वें संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को संस्कृत भाषा सीखने और उसका अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि भारत का सारा ज्ञान संस्कृत भाषा में है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा दुनिया का उसकी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सकती है। गृहमंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा अधिकांश भाषाओं की जननी है और सरकार देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है।
संस्कृत एक प्रकार से भारत की आस्था है, हमारी परंपरा है, ये सत्य है, नित्य है, सनातन। इसके साथ साथ ज्ञान और ज्ञान की ज्योति दोनों एक प्रकार से संस्कृत में ही समाहित है।
वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि सनातन परंपरा, दर्शन, विज्ञान, योग और अध्यात्म की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है और इसके शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर वर्ष विशेष अनुदान भी देती है।
संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, सही मायने में जो हमारे मातृभाषा है वो है तो संस्कृत ही। जो हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी भाषाएं संस्कृत की शाखाएं हैं। और आज के इस युग में हम अपनी धरोहर को रख के भूल जाएं, उसे याद ना करें, तो इससे ज्यादा हम अज्ञानी और क्या होंगे।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक है। एक रिपोर्ट।
पहली धान की किस्म DRR धन 100 कमला है, जो सांबा महेश्वरी किस्म से बनाई गई है। ये किस्म 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और 25% ज्यादा उपज देती है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST1 है, जो खारे और क्षारीय मिट्टी में भी अच्छी उपज देती है और ऐसी स्थिति में 30% ज्यादा उत्पादन करती है। अगर इन दोनों किस्मों की खेती करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाए तो देश में अतिरिक्त 45 लाख टन धान का उत्पादन हो सकता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने इन किस्मों को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इनसे उत्पादन की लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये किस्में देश की बढ़ती जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अधिक प्रभावी साबित होंगी।
उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है, बल्कि किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो अपने आप लागत भी घटेगी, पानी भी बचेगा, मीथेन गैसों का उत्सर्जन कम होगा तो पर्यावरण भी बचेगा।
ICAR ने कहा है कि ये दोनों किस्में जलवायु के अनुकूल और अधिक उत्पादन देने वाली हैं। ये देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कल से अपने सभी 14 स्वच्छता सर्कलों में श्रमदान के रूप में एक मेगा स्वच्छता अभियान शुरू करने जा रही है। NDMC ने बताया कि इस पहल में परिषद के हर विभाग के सभी कर्मचारी शामिल होंगे, जो प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक इस अभियान में हिस्सा लेंगे। परिषद ने बताया कि इसमें आम जनता और क्षेत्रीय निवासियों की भी भागीदारी होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के विशेष आयोजन शिक्षकों के साथ साइकिलिंग शीर्षक में भाग लिया। एक रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए नायक की तरह होते हैं। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग को फैशन बनाने की क्षमता रखने के कारण अब वे विकसित भारत के लिए नायक भी बन सकते हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों से साइकिल का उपयोग करने और विद्यार्थियों को भी इसे अपनाने का आग्रह किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इससे मोटापा से लड़ने और फिट इंडिया तथा विकसित भारत के मिशन में सफलता मिलेगी। इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान की शुरुआत पिछले साल दिसंबर में हुई थी। इसमें अब तक देश के 5,000 स्थानों पर विभिन्न आयु वर्ग के 2,00,000 से अधिक लोग भागीदारी कर चुके हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 10 तारीख तक एक समर कैंप का आयोजन कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस ने बताया कि सशक्ति 2025 के नाम से आयोजित इस कैंप के 21वें संस्करण का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करना है। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा और पूरे दिन धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल हवाओं के चलने का भी अनुमान जताया है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद को सशक्त बनाने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली जिला न्यायालय द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से लंबित ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए विशेष संध्याकालीन न्यायालय का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्टेडियम में आयोजित संस्कृत भारती के 1008वें संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह में भाग लिया। और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कल से श्रमदान के रूप में मेगा स्वच्छता अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।